है सीता जी भी जाते हैं, जनक के कुल में उत्पन्न है सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा और सदा पति का हित चाहने वाली श्री राम के पीछे चली। तो वनवास तो राम को मिला था, सीता जी राम के हमेशा अनुगत हैं, इसलिए सीता जी स्वेच्छा पूर्वक श्री राम के साथ गईं। जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है, रामस्य दयिता भार्यां नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायैव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू सीता प्यनुगता रामं शशनं रोहिणी यथा। इसके बाद नारद जी राम कथा में आगे बताते हैं कि जिस समय रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया और हनुमान जी उनकी खोज में लंका गए, तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ रावण की लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावण पालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोक वनिकां गतां। तो सीता जी को देखा, हनुमान जी ने देखा सीता जी को, क्या कर रही हैं, ध्यायन्तीं वो ध्यान कर रहे हैं, तो किसका ध्यान कर रहे हैं, श्री राम का ध्यान कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने दर्शन किया सीता जी का, तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर श्री राम का संदेश सुनाया हनुमान जी ने। बहुत मुश्किल था सीता जी को विश्वास कराना, बहुत मुश्किल था, क्यों, क्योंकि रावण ने साधु का वेश धारण करके सीता जी का अपहरण किया है ना। अब सीता जी किस पर विश्वास करें, आप सोचिए, अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिस पर सीता जी विश्वास करें, साधु के वेश में रावण ने सीता जी का अपहरण किया है, तो हनुमान जी एक मानर हैं है ना, तो कैसे विश्वास करें है ना। लेकिन हनुमान जी भी बहुत बुद्धिमान, वो जो है बहुत विचार करते हुए उन्होंने बहुत उन्होंने चिंतन किया कि मैं सीता जी को अपना परिचय कैसे दूं कि वे अपने प्राण त्याग ना कर लें, क्योंकि उनके साथ पहले जो धोखा हुआ है तो वो मेरा विश्वास नहीं करेंगी। तो हनुमान जी ये नहीं सोचते हैं कि वो मेरा विश्वास नहीं करेंगी तो फिर छोड़ो, जाने दो, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो सच्चा आदमी हूँ, ऐसा नहीं हनुमान जी ने सोचा। अगर वो मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, इसलिए अगर मेरे पर विश्वास ना करें सीता जी तो इनमें इसमें मेरा दोष नहीं है, नहीं उनका दोष नहीं है, लेकिन मुझे कैसे विश्वास दिलाना है। तो उन्होंने बहुत युक्तियाँ सोची और तब जो है सीता जी को विश्वास दिलाया। सबसे पहले तो सीता जी के सामने आए ही नहीं, सीता जी के सामने आए ही नहीं है ना, और सीता जी को राम कथा सुनाई, क्योंकि देखने पर अब विश्वास नहीं है, है ना, लेकिन सुनकर के कोई विश्वास करे। अब ये कहा जाता है साधु को जो है देख करके आप साधु नहीं समझ सकते कि साधु है या नहीं, क्योंकि साधु के वेशभूषा में बहुत लोग हैं, तो सुनकर के ही आप साधु की पहचान कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी ने सीता जी को अपना रूप नहीं दिखलाया, स्वयं सामने नहीं आए बल्कि राम कथा सुनाई, और सीता जी सुन रही हैं, आवाज़ आ रही है, नहीं कहाँ से आ रही है ना, तो वे सुन रही हैं, सुनते सुनते है ना। और अंत में जो है मतलब राम कथा में वो वहां तक आ गए कि श्री राम का भेजा हुआ मैं उनका सेवक हनुमान अभी आ गया हूँ यहाँ पर और सीता जी के दर्शन कर रहा हूँ। हनुमान जी ने जो है मतलब इस तरह से परिचय दिया कि राम कथा में वो शुरू किया उन्होंने दशरथ जी से कि दशरथ जी के पुत्र हुए, चार पुत्र हुए ना, फिर किस तरह से विवाह हुआ, फिर वनवास हुआ, फिर कहाँ कहाँ गए, फिर कैसे हुआ, क्या हुआ, सीता का हरण हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर श्री राम का भेजा हुआ दूत मैं यहाँ आया हूँ और सीता जी के मैंने दर्शन कर लिए हैं, मैं सीता जी का दर्शन कर रहा हूँ, है ना। तो सीता जी को जो है सबसे अच्छा ये जो है तरीका था हनुमान जी का कि सीता जी को विश्वास दिलाएं, हैं। और जब सीता जी ने अनुमति दी कि ठीक है आओ सामने, मुझे विश्वास हो गया है, तब वो सीता जी के सामने आए, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया, तो अपनी पहचान दी, तो उनकी पहचान क्या थी, राम की दी हुई मुद्रिका सीता जी को दी, तो जो है सीता जी ने विश्वास किया कि हाँ ये श्री राम का भेजा हुआ है। तो इस तरह से सांत्वना देकर उन्हें सांत्वना दी और वाटिका का द्वार तोड़ दिया। तो बाद में फिर जो है उन्होंने विध्वंस करना शुरू किया। अब सीता जी का संदेश वे राम के पास ले जाना चाहते हैं और अब वो सोचते हैं कि इन असुरों को कुछ दंड जरूर मिलना चाहिए, मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ है इनको आतंकित करके जाऊँ, कुछ याद करें कि हाँ कोई आया था यहाँ पर। तो हनुमान जी ने फिर जो है वाटिका का विध्वंस किया और एक उसी वृक्ष को छोड़ा जिसके नीचे सीता जी बैठे थे, बाकी सब वृक्ष तोड़ दिए, सब कुछ, है ना। तो इस तरह से हनुमान जी ने ये कार्य किया और सीता जी के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जला डाला, केवल वही स्थान छोड़ा जहाँ सीता जी थी, बाकी पूरी लंका को जला डाला। और वे हनुमान राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान महाकपिः। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जाकर श्री राम की प्रदक्षिणा करके यो सत्य निवेदन किया कि मैंने सीता जी का दर्शन किया है। शोभिगम मैं महात्मानम कृत्वा रामम प्रदक्षिणम निवेदयन अमेयात्मा दृष्ट्वा सीतेति तत्त्वतः। तो उन्होंने निवेदन किया श्री राम को कि मैंने सीता जी का तत्व से दर्शन किया। कैसे दर्शन किया है, तत्व से दर्शन किया। तो दर्शन समझना है कि कैसा दर्शन होना चाहिए, तत्व से दर्शन होना चाहिए। और जब तत्व से दर्शन किया तो इसका मतलब क्या है कि पूरी तरह से राम का संदेश भी मैंने सुनाया और उनका भी संदेश मैं लेकर के आया हूँ, तभी तत्व होता है, खाली दर्शन नहीं। केवल वैसे उनको तो आदेश मिला था सीता जी को केवल खोज करना है, सीता जी को खोज करना है, लेकिन उन्होंने और आगे का भी कार्य किया, केवल सीता जी को खोजने का कार्य नहीं किया, राम का संदेश सुनाया और सीता जी का संदेश भी लेके आए श्री राम को देने के लिए। तो और उसके बाद फिर श्री राम ने पुल, समुद्र पुल बनाया, पुल बनवाया और उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावण महावे रामा सीता मनुप्राप्य परां व्रीडां उपागमन। आप लोग सुन रहे हैं, श्री राम को अब बहुत लज्जा हुई, रावण का वध कर दिया और सीता जी मिल गई, लेकिन राम को बड़ी लज्जा हुई। सुन रहे सब लोग, क्या राम को क्या हुआ, बड़ी लज्जा हुई। तो बड़ी लज्जा क्यों हुई, उनको तो प्रसन्नता होनी चाहिए, रावण का वध कर दिया और सीता को प्राप्त कर लिया, हाँ, तो लज्जा क्यों हुई? श्री राम को बड़ी लज्जा क्यों हुई? श्री राम को प्रसन्नता क्यों नहीं हुई? लज्जा क्यों हुई? तब भरी सभा में सीता के प्रति वे कठोर वचन कहने लगे, जो नहीं बोलना चाहिए सीता जी को, जो कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए, तो कठोर वचन श्री राम ने सीता जी को बोले। क्या बोले? कठोर स्वर में नहीं बोले, श्री राम कोमल स्वर में बोले, लेकिन वो शब्द कठोर थे। क्या बोले? कि देवी तुम ये मत समझो कि मैंने तुम्हें पाने के लिए रावण का वध किया है। मैंने तो अपने कुल की इज्जत के लिए रावण का वध किया है, उस दुष्ट के अन्याय का दंड देने के लिए मैंने रावण का वध किया है, और अब मुझे आपके चरित्र में संदेह है, इसलिए मैं आपका त्याग करता हूँ, और आप जहाँ इच्छा हो वहाँ आप जा सकती हैं। बहुत कठोर श्री राम ने बहुत कोमलता से कहे, लेकिन वो शब्द बहुत कठोर थे, है ना। तो श्री राम ने ऐसे मर्मभेदी वचन कहे। उनकी इस बात को ना सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गईं। तामवाच ततो रामहं परुषं जनसंसदे अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती। तो साध्वी हैं सीता जो है, क्या है? साध्वी हैं, सती हैं। इसलिए अगर पति ने उनका त्याग कर दिया है तो वे कहाँ जाएंगी? उन्होंने कहा मेरी एकमात्र गति अग्नि, तो मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी। तो सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गईं। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। श्री राम के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। तदोग्नि वचनात् सीताम ज्ञात्वा विगत कल्मषाम कर्मणा तेन महता त्रैलोक्ये सचराचरम त्रैलोक्यम सचराचरम स देवर्षि गणम तुष्टम राघवस्य महात्मनः। और वास्तव में श्री राम ने सीता को ये जो कठोर वचन बोले थे, ये वास्तव में वो सीता जी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं बोले थे, या उन्हें सीता जी के चरित्र में कोई शंका थी, बल्कि इस संसार को दिखाने के लिए कि सीता कितनी पवित्र हैं, इस संसार को दिखाने के लिए श्री राम ने ऐसा बोला था सीता जी को। और सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, और अग्नि देवता ने प्रमाणित किया कि सीता पवित्र हैं, है ना। श्री राम ने सीता को स्वीकार किया। तो ये जो है विशेष रहस्य है। इसके बाद फिर श्री राम भरत से मिलने के लिए आते हैं, पुष्पक विमान के ऊपर बैठ करके भरत जी से मिलने के लिए आते हैं। और भरत से मिले श्री राम ने नंदीग्राम में अपनी जटा कटाकर भाइयों के साथ सीता को पाने के अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया है। नंदीग्राम में जटाम हित्वा भ्रातृ भी सहित नघ राम सीता मनु प्राप्य राज्यम पुनर आवाप्तवान। तो नारद जी ये बात जो बता रहे हैं वाल्मीकि मुनि को, ये उस समय की बात है जब श्री राम ने राज्य प्राप्त कर लिया। वाल्मीकि मुनि को राम कथा का परिचय उस समय प्राप्त हुआ जिस समय राम अयोध्या में आ गए, रावण का वध कर दिया। और अब आगे नारद जी कहते हैं कि अब राम राज्य में कैसा होगा, क्या होगा, सुन रहे सब लोग? आप लोग बातें बहुत करते हैं, आप बातें नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है ना, कथा सुनो, इससे कथा का अपमान होता है, बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
अलग अलग बैठो,
हाँ नहीं तो दूर बैठो, पास में मत बैठो, आपस में बातें करते हैं बहुत खराब। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, संतुष्ट होंगे, पुष्ट होंगे, धार्मिक होंगे, रोग व्याधि से मुक्त होंगे, दुर्भिक्ष का भय ना होगा। अब राम राज आ गया है, नारद जी क्या कह रहे हैं, अब राम राज आ गया है, अब क्या होगा, सब लोग प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, संतुष्ट होंगे, पुष्ट होंगे, धार्मिक होंगे, रोग और व्याधि से मुक्त होंगे और दुर्भिक्ष का भय ना होगा। प्रहृष्टम प्रहृष्टम दितो लोकाः तुष्टा पुष्टा सुधार्मिकः निरामयो हि रोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। सुन ले आप लोग, तो सुन ले ध्यान से, अभी बंद करो, पंखा बंद कर दो। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। राम के राज्य में क्या है, राम के राज्य की क्या विशेषता है, कोई अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। कैसा आश्चर्य है कि कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे, है ना। यहाँ तो पुत्र को मारते हैं, हत्या करते हैं, अपने पुत्र की हत्या करते हैं। पिता भी अपने पुत्र की हत्या करता है, माता भी अपने पुत्र की हत्या करते हैं, गर्भ के अंदर ही हत्या करते हैं, है ना। लेकिन राम के राज्य में कोई कहीं अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा नहीं होंगी। कितना आश्चर्य, राम के राज्य में स्त्रियां विधवा नहीं होंगी, किसी के पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, कि पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, है? और पत्नी के सामने, पति पत्नी के रहते पति की मृत्यु नहीं होगी, है ना। और स्त्रियां सदा ही पतिव्रता होंगी, पतिव्रता होंगी। स्त्रियों का मन अपने पति के अलावा और कहीं नहीं जाएगा। न पुत्र मरणम केचन द्रक्षन्ति पुरुषा क्वचिन नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता। आग लगने का किंचित भी भय नहीं होगा। क्या समझे, राम के राज्य में आग लगने का कोई भय नहीं होगा। अब यहाँ तो आग लगने का हमेशा भय रहता है, फायर ब्रिगेड तुरंत तैयार रहता है, और फिर खूब जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए वो जाते हैं कहीं आग लगी। आग लगने का कोई भय नहीं, कहीं आग लगेगी नहीं। राम के राज्य में अग्निकांड की कोई समाचार नहीं मिलेगा, आग लगने का कोई भय नहीं होगा। और कोई प्राणी जल में नहीं डूबेगा, पानी में कोई नहीं डूबेगा, नदी में, समुद्र में, जहाँ भी जाओ खूब आराम से स्नान करो, डूबने का कोई भय नहीं है। पानी में डूबने की कोई घटना नहीं होगी। समाचार पत्र सब खाली होंगे, समाचार पत्रों को जो है कोई सामग्री नहीं मिलेगी छापने के लिए। राम के राज्य में कोई सामग्री नहीं मिलेगी, यही घाटा है, यही नुकसान है समाचार पत्र वालों, मीडिया के लिए बड़ा नुकसान है। कोई ऐसे समाचार मिलेंगे नहीं, ये समाचार पत्र ही नहीं समाचार भरे हैं, इसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, है ना। और व्यभिचार का समाचार तो मीडिया को कोई मिलेगा नहीं, व्यभिचार का भी समाचार नहीं मिलेगा, स्त्रियां पतिव्रता हैं, है ना। तो कोई जल में नहीं डूबेगा, और वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। वात रोग, वायु के कितने रोग आजकल चल रहे हैं, हाँ, तो वात रोग नहीं होगा और ज्वर भी बुखार भी नहीं होगा। तो सब दवाइयों की दुकानें भी नहीं होंगी, राम के राज्य में दवाइयों की दुकानें सब बंद हो जाएंगी, अस्पताल सब बंद हो जाएंगे, यही नुकसान है। राम के राज्य में जो है यही नुकसान है, हैं कि अस्पताल में सब बंद होंगे, डॉक्टरों का जो है काम सब ठप। न चाग्निजं भयं किंचन नाप्सुमज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किंचन नापि ज्वरः कृतं तथा। भूख और चोरी का डर भी नहीं रहेगा, न तो भूख का डर है, आपने खाया नहीं कई दिनों से, खाए नहीं है, तो अगर आप खाना चाहो तो खा सकते हो, और नहीं खाते हो तो भी कोई भूख सताएगी नहीं आप, भूख का डर नहीं है, चोरी का डर नहीं है। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे, सत्यों की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। न चापी छुन भयम तत्र न तस्कर भयम तथा नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृते युगे तथा। एक सौ पचपन अब ये घटना है जब श्री राम विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके विश्वामित्र मुनि के साथ कहां पर आए हैं, मिथिलापुरी में आए। धर्मात्मा राजा जनक ने श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों भाई मुनि तथा उन दोनों राजकुमारों का भोजन करके इस प्रकार कहा। तो इसको सुनिए, ये कथा बड़ी सुंदर है। तत्र प्रभाते विमले कृतकर्मा निराधपः विश्वामित्रं महात्मानं आजुहाव स राघवं तमर्चयित्वा धर्मात्मा शात्रदृष्टेन कर्मणां राघव च महात्मानो तदा वाक्यम वाचः। क्या बोले कि हे मुनिवर, आपका स्वागत है। कौन बोले? जनक जी बोले। किससे बोले? विश्वामित्र जी से बोले, हे मुनिवर आपका स्वागत है। हे महर्षि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आप क्या, मैं आपका आज्ञा पालक हूं। कौन बोले? जनक जी बोले। भगवन् स्वागतम तेस्तु किम करोमि तवानग भवान आज्ञापयतु माम आज्ञाप्यो भवता हयम्। जनक जी जैसा कहने पर विश्वामित्र जी ने उनसे ये बात कही। एवं मुक्तः स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनि श्रेष्ठो वाक्यम वाक्य विशारदः। अब विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? जनक जी से बोल रहे हैं। महाराज, राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्व विख्यात वीर हैं। ये दोनों पुत्र दशरथ जी के क्या हैं? विश्व विख्यात वीर हैं। और आपके यहाँ जो ये श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। कोई मतलब कार्यक्रम नहीं है विवाह का, धनुष को देखना चाहते हैं, है ना। तो ये इस समय कोई स्वयंवर नहीं चल रहा है। वाल्मीकि रामायण में ये इस प्रकार की घटना नहीं है कि सीता का स्वयंवर हो रहा है, बल्कि पहले हो चुका स्वयंवर और कोई नहीं धनुष को खींच पाया, प्रत्यंचल नहीं चढ़ा सका और वो सब जो है चले गए। अभी तो केवल मिलने आए हैं और विश्वामित्र जी ने कहा कि धनुष दिखाइए। पुत्रो दशरथस्य मां क्षत्रियो लोके विस्तृतौ दृष्टु कामो धनुश्रेष्ठम निदेतं त्वयि तिष्ठति। आपका कल्याण हो वो धनुष इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या? धनुष दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब चले जाएंगे, इच्छा पूरी हो जाएगी, चले जाएंगे। केवल दिखा दीजिए धनुष। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट होकर इच्छानुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। बस इतना ही कार्यक्रम है, धनुष को देखने का कार्यक्रम है। ये तंदर से भद्रम ते कृत कामो नपात्मजो दर्शना दस धनुषो यथेष्टम प्रति आश्यतः। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, मुनिवर इस धनुष का वृत्तांत सुनिए, जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है वो सब बताता हूँ। अब राजा जनक को तो चिंता है ना, इसलिए वे जो है अपनी पूरी बात बताना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पुत्री सीता अविवाहिता है तो पिता के लिए ये बड़ी चिंता की बात होती है। तो जनक जी जो है स्वयं अपनी पूरी बात बताना चाहते हैं। और विश्वामित्र जी जैसे मुनि हैं तो वे जरूर उनके इस कार्य को सिद्ध करेंगे, तो ये आशा से वो बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, किसका इतिहास में बता रहा हूँ। एवं मुक्तस्तु जनक प्रत्युवाच महामुनि श्रुताम मत्स्य धनुषो यदर्थम ये तिष्ठति। निमि के बड़े पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे, ये निमि का वंश है, महाराज जनक का जो वंश है वो निमि का है, मनु से प्रारंभ हुआ ना ये वंश, और मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, हाँ इक्ष्वाकु के पुत्र हुए विकुक्षी निमि और दंडक, सौ पुत्र हुए, तो विकुक्षी निमि दंडक, तो विकुक्षी बड़े थे और निमि उनके छोटे थे, तो निमि के पुत्र हुए राजा देवरात, उन्हीं के हाथ में ये धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था, बहुत इनके वंश में बहुत पहले ये धनुष। देवरात इति ख्या तो निमेर ज्येष्ठो महेपति न्यासो यम दस्य भगवन हस्ते दत्तो महात्मनः। पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी शंकर जी ने रोष पूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा कि देवगण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के मस्तक काट दूंगा। धनुष जी ने कहा, दक्ष यज्ञ अवधे पूर्वम धनुरायम वीर्यवान विध्वंस प्रदसान रोषान सलीलम इदम अब्रवीन यस्मान भागार्थिनो भागम ना कल्पयत मे सुराम वरांगानी महारहाणी धनुषा सातयामी वह। ये सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा महादेव जी को प्रसन्न करने लगे, अंत में उन पर शिव जी प्रसन्न हो गए। ततो विमनसा सर्वे देवा वे मुनि पुंगव प्रसादयन्त देवेशम तेषां प्रीतो भवन भवः। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब देवताओं को ये धनुष दे दिया, जिस धनुष से देवताओं का मस्तक काटना चाहते थे वही धनुष उन्होंने देवताओं को दे दिया कि लो ले जाओ। किसने दिया? शिव जी ने दिया, देवताओं को दे दिया। यही वह शिव जी का धनुष है जो मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया था, तो देवताओं ने धरोहर के रूप में दिया इनके महल में। प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौतेषां महात्मनां तदेतं देवदेवस्य धनुरत्नं महात्मनः न्यासभूतं तदानस्तम अस्माकं पूर्वजे विभव। एक दिन में यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। सुन रहे सब लोग? हाँ, कौन कह रहे हैं इस बात को? महाराज जनक कह रहे हैं। एक दिन में क्या कर रहा था? भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। तो एक विशेष यज्ञ होता है जिसमें राजा को ही हल चलाना होता है, यज्ञ की भूमि को शुद्ध करने के लिए राजा खुद ही हल चलाते हैं, है ना। उसमें बैल हल को नहीं खींचते हैं बल्कि राजा और रानी हल को खींचते हैं, राजा और रानी दोनों बैल बनते हैं। तो हल को मैं चला रहा था, उसी समय हल के अग्रभाग से ज्योति गई, भूमि से एक कन्या प्रकट हुई, सीता से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। सीता कहते हैं हल से खींची रेखा, है ना, तो उससे उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वो मेरी कन्या बढ़कर सयानी हुई। अथ मे कृषथा क्षेत्रम लांगलादोत्थिता ततः क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विस्तृता भूतलादोत्थिता सा तु व्यवर्धते महामात्मजा। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने ये निश्चय किया, ये कन्या कैसी है? अयोनिजा। जितनी कन्याएं हैं सब योनिजा होती हैं, माता के गर्भ से पैदा होती हैं, लेकिन यह सीता क्या है? किसी माता के गर्भ से नहीं पैदा हुई, अयोनिजा इसको बोलते हैं, अयोनिजा कन्या। तो अपनी अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने ये निश्चय किया क्योंकि अब विवाह के योग्य हो गई मेरी कन्या, तो मैंने उसके विषय में निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा, धनुष को तोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि धनुष तो बहुत पवित्र है, बहुत पूजनीय है, इसलिए ये जनक महाराज ने नहीं सोचा था कि जो धनुष को तोड़ दे। क्या था उन्होंने, जो चढ़ा दे, प्रत्यंचा चढ़ा दे, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दे, चढ़ा देगा अपने पराक्रम से, उसी के साथ में अपनी कन्या का ब्याह करूंगा, है ना। उसने बाण, वैसे तो बाण रख करके प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है, तो ये भी बात नहीं थी कि बाण रखो कि बाण छोड़ेंगे फिर किसी को। अगर बाण रख करके प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर बाण छूटेगा तो किसी को लगेगा, तो बाण भी नहीं उसमें चढ़ाना है, केवल धनुष को चढ़ाना है, प्रत्यंचा चढ़ाना है, है ना। इस तरह इसे वीर सुल्का बनाकर अपने घर में मैंने रखा है, अपनी कन्या को रखा है। पराक्रम, पराक्रम का शुल्क है, जो देगा उसको मैं अपनी कन्या दूंगा, तो उसको वीर सुल्का बोलते हैं, है ना। मुनिवर भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहां आकर मांगा। वीर शुल्के दिमे कन्या स्थापिते यमयो निजाम भूतलादुत्थिताम ताम तो वर्धमाना ममात्मजाम वरिया मा सुनागत्य राजानो मुनि पुंगव। इस कन्या को एक तो नाम दिया गया वीर शुल्का, दूसरा नाम दिया गया अयोनिजा, ये सब विशेषताएं हैं इस कन्या की। परंतु मुनिवर, कन्या का वरण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने ये बता दिया कि मेरी कन्या वीर शुल्का है, यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी है, क्योंकि तो किसी ने भी अपना वो पराक्रम दिखाया नहीं है। तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां प्रतिवीक्षितां वीर शुल्केति भगवन् न ददामि सुतामहम्। हे मुनिवर, तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। तथा सर्वे निपतयः समेत्य मुनिपुंगव मिथिलामप्यु पागम्य वीर्यं जिज्ञासवस्तदा। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिवजी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ ना हो सके। क्या समझे, वो धनुष को हिला भी नहीं पाए, हैं? तो फिर उठाने की बात तो बहुत दूर है, हैं? और फिर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने की बात बहुत दूर है, और फिर प्रत्यंचा बांध करके फिर चढ़ाएं, प्रत्यंचा को चढ़ाएं, तो वो बहुत दूर की बात है। तेषां जिज्ञासमानानां शैवं धनुरुपाहृतं न सेकुर ग्रहणे तस्य धनुस्तोलने पीवा। महामुनि, उन पराक्रमी राजाओं की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। इसके बाद जो घटना हुई उसे आप सुन लीजिए। सब राजा कोई भी उसको धनुष को हिला नहीं सके, हाँ, तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं अपनी कन्या का विवाह किसी के साथ नहीं करूँगा। तेषां वीर्यवताम वीर्यम अल्पम ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता न प्रत्यस तन्नबोध है तपोधन। मुनि प्रवर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित होते और अपने पराक्रम के विषय में मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। अपना पराक्रम अच्छा, उन्होंने कहा कि तुम हमें, हमारे पराक्रम को नहीं मानते हो, तो हम अपना पराक्रम दिखाते हैं और कन्या को हम बलपूर्वक ले लेंगे। हाँ, तो ये भी होता है, कि अगर कोई भी किसी भी राजा में इतना पराक्रम नहीं है तो फिर भी अपना पराक्रम दूसरे प्रकार से दिखाएंगे कन्या को लेने के लिए। तो उन्होंने कहा, घेर लिया। तथा परम है कोपेन राजानो मुनि पुंगव अरुंधन मिथिलाम सर्वे वीर संदेह मांगताम। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार मानकर कि तुम हमारा तिरस्कार कर रहे हो, अब जितने राजा हैं अगर कोई भी धनुष नहीं हिला सका तो फिर यही माना जाएगा, यही माना जाएगा कि आपकी प्रतिज्ञा ही गलत है, ये इस तरह का पराक्रम जो संभव नहीं है, आपने ये प्रतिज्ञा क्यों की? तो जनक जी का ही फिर दोष माना गया। अगर कोई भी राजा वो पराक्रम नहीं दिखा सकता है तो इसका मतलब क्या है कि पराक्रम संभव नहीं है, असंभव है, तो आपने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? तो आप वो क्या अत्यंत रुष्ट होकर मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना आरंभ कर दिया। आत्मानम अवधूतम मे विज्ञायन विपुंगवान रोषेण महताविष्टा पीड़ियन मिथिलाम पुरी। पूरे एक वर्ष तक वे घेरा डाले रहे, इस बीच में युद्ध के सारे साधन छीन हो गए, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। एक साल तक युद्ध चलता रहा और सब राजा मिलकर के अपनी सेनाओं से घेर लिया। जनक जी कहते हैं कि मेरी अकेली सेना है ना, तो एक साल तक युद्ध हुआ और हमारे युद्ध के सब साधन छीन हो गए, सेना है, और हथियार हैं और घोड़े हैं, हाथी हैं, रथ हैं, सब नष्ट हो गए। तो बड़ी चिंता हुई मुझे। किसको चिंता हुई?
जनक
जी को बड़ी चिंता हुई। तथा संवत्सरे पूर्णे क्षयम् जातानि सर्वशां साधनानि मुनि श्रेष्ठ ततोऽहं व्रज दुःखितः। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न किया और देवताओं ने मुझे चतुरंगनी सेना प्रदान की। अब मैंने देवताओं से को प्रसन्न किया और देवताओं से सेना प्राप्त की। ततो देवगणां सर्वान् तपसाहं प्रसादयम् ततश्च परम प्रीतास् चतुरंग बलम सुराम। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापी राजा मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। उस सेना के द्वारा सब भागे। ततो भग्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः अवीर्या वीर संदिग्धा सामात्या पाप कारिणः। मुनि श्रेष्ठ यही वो परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। जनक जी कह रहे मैं दिखाऊंगा। तदेतन मुनि शार्दूल धनु परम भास्वरम राम लक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रते। मुने यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंत चढ़ा दें, क्या इन्हें कहा तोड़ दें? क्या कहा? इस धनुष की प्रत्यंत चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को इन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूं तो मेरा भार उतर जाए। इतना बड़ा भार है, मेरी कन्या अविवाहिता है, तो जनक जी कह रहे हैं यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने सुताम अयोनिजाम सीताम दद्याम दासरथे हम दद्याम दासरथे रहम। जनक की ये बात सुनकर विश्वामित्र बोले राजन आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। और देखिए श्री राम बिल्कुल आश्रित हैं, श्री राम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, जैसे उनको आज्ञा मिलेगी वैसे ही वो करेंगे। अपनी तरफ से वो बता भी नहीं रहे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। श्री राम जो है कितने आश्रित हैं। तो विश्वामित्र जी बोले ठीक है श्री राम को धनुष दिखाओ। जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी चंदन मालाओं से सुशोभित वो दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। उस धनुष की पूजा होती है ना, कैसे? चंदन और मालाओं से सुशोभित उस धनुष को लाओ। तथा से राजा जनक कहा सचिवान व्याद देश धनुरानी यताम दिव्यम गंधमाल्यानुलेपितम। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। जनकेन समादिष्टा सचिवा प्राविशन पुरम तद धनु पुरता कृत्वा निर्जग्मो रमितो जसः। अब वो धनुष देखिए कितना भारी था। वो धनुष आठ पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। वो धनुष बहुत बड़ी संदूक, आठ पहियों वाली लोहे के संदूक में रखा गया। उसे मोटे ताजे 5,000 वीर किसी तरह ठेल कर वहां तक ला सके। कितना बड़ा धनुष होगा वो, आठ पहिए वाला संदूक है, तो अभी 5,000 बहुत शक्तिशाली लोग खेल करके लाए हैं,
उठा के नहीं लाए।
आठ पहिए वाला संदूक है, उसको भी ठेलने में 5,000 बलशाली मनुष्य हैं जो ठेल करके लाए, कितना भारी होगा सोचिए। नृणाम शतानी पंचासन व्यायता नाम महात्मनाम मंजूषाम अष्ट चक्राम ताम समूहस्ते कथंचन, यानी कथंचन में बहुत मुश्किल से ठेल करके लाए हैं। लोहे की वो संदूक जिसमें धनुष रखा गया था लाकर उन मंत्रियों ने राजा जनक से कहा, तामादाय समंजोसाम आय सीम यत्र तद्धनु स्वरूपमं ते जनकम ऊचुर्नपति मंत्रिणः। राजन, ये समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है, यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। मंत्री ऐसे बोल रहे हैं, मतलब आशा नहीं है कि धनुष का जो है कुछ है, इसमें वो कुछ कर सकते हैं, प्रत्यंचा भी चढ़ा पाएंगे, लेकिन कहा कि अगर दिखाना चाहें तो दिखा दीजिए। अभी बस दिखाने की बात चल रही है, कोई नहीं सोचता है किसकी प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे श्री राम, है ना। तो उनका अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, अगर आपकी इच्छा है दिखाने की तो दिखाइए, है ना। ये कहा, इदम धनुर्वरम राजन पूजितम सर्वराज भी मिथिलाधिप राजेंद्र दर्शनीय यदीच्छसी। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र और दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तेषां नृपो वचा श्रुत्वा कृतांजलि रभासत विश्वामित्रम महात्मानम ताव भो राम लक्ष्मण। ब्राह्मण, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनक वंशी राजाओं ने सदा ही पूजन किया है, तथा जो इसे उठाने में समर्थ न हो सके उन महापराक्रमी राजाओं ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। इदम धनुर्वरम ब्राह्मण जनके रवि पूजितम राजभिश्चा महावीर्यैर अशक्त पूरितम तदा। इससे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके। क्या समझे? देवता, यक्ष, किन्नर, नाग, कोई भी इसको नहीं चढ़ा सके। है? कैसे चढ़ाना होता है? पहले तो प्रत्यंचा बांधना है धनुष में, और इसके बाद फिर खींचना है, है ना। तो कोई नहीं चढ़ा सका है, देवता, यक्ष, किन्नर, है ना, कोई नहीं चढ़ा सके हैं। दर्शन करना है तो कर लो, धर्म जी ये कह रहे हैं, अगर दर्शन करना चाहो तो कर लो दर्शन, है ना। इस तरह से उन्होंने कहा। नियतसुरगणा सर्वे सासुरा ना च राक्षसां गंधर्व यक्ष प्रवरा सकिन्नर महोरगां। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने, उसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। देखो, मनुष्य की बात तो छोड़ो, देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मनुष्यों की शक्ति तो बहुत थोड़ी है। देवता और असुर और राक्षस और गंधर्व और यक्ष और किन्नर और महानाग, कोई भी इसको जो है चढ़ा नहीं सके। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने, इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। स्वागतर मानुषाणाम चा धनुषो से प्रपूर्ण आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा। मुनि प्रवर, ये श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है, महाभाग आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। तदेतन धनुषाम श्रेष्ठम आनीतम मुनि पुंगव दर्शे तन महाभाग अनयो राजय पुत्रयो। श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का वो कथन सुनकर श्री राम से कहा, वत्स राम इस धनुष को देखो। विश्वामित्र ने आज्ञा दी, कितनी आज्ञा दी, जितनी आज्ञा दी उतना ही करेंगे, है ना। तो श्री राम से कहा देखो धनुष को। विश्वामित्रासरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितम वत्स रामे धनुपश्य इति राघवम अब्रवीन। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वो धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, महर्षेर वचनान रामो यत्र तिष्ठते तद्धनु मंजूषाम ताम अपावृत्य दृष्ट्वा धनुरथाम ब्रवीन। अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष मैं हाथ लगाता हूँ, मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। श्री राम बोले कि मैं हाथ लगा रहा हूँ और इसको उठाने का और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। इदम धनुर्वरम देव्याम संस्पृशामि पाणिनाम यत्नवान् च भविष्यामि तोलने पूरणे पीवान। तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीला पूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। प्रत्यंचा कैसे चढ़ाई? हाँ, रस्सी बांधी उसे, तो झुकाया और रस्सी बांधी, उसमें प्रत्यंचा चढ़ा दी, है ना। बाणमित्य ब्रवीन राजा मुनिश्चा समभासत लीलिया सा धनुर्मध्ये जग्राह वचनान मुने पश्यताम सहस्राणाम बहूनाम रघुनंदनाम आरोपयत स धर्मात्मा सलीलम एव तन धनु। प्रत्यंत चढ़ाकर श्री राम ने जो ही उस धनुष को कान तक खींचा तो ही वो बीच से टूट गया। तो तोड़ने के लिए नहीं खींचा था, तोड़ना तो नहीं था, लेकिन उसको कान तक खींचा, है ना, यहाँ से पड़ा मुट्ठी में पकड़ा और यहाँ प्रत्यंचा को यहाँ तक खींचा, कान तक खींचा तो टूट गया। आरोपयत्वा मौर बीचा पूर्यामास तद्धनो तन्वभंज धनुर्मध्ये नर श्रेष्ठो महायशा। टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई, ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया, क्योंकि वो तोड़ने का तो विचार था नहीं, है ना, लेकिन बहुत पुराना होने के कारण वो और ज्यादा कठोर हो गया था, है ना, कि मुड़ नहीं सकता। जैसे कि बांस है, है? तो जैसे सूख जाता है तो और कठोर हो जाता है, मुड़ता नहीं, और आप मुड़ेंगे तो टूट जाएगा, है ना। तो धनुष इतना कठोर हो गया था कि वो मुड़ने वाला नहीं था, और राम ने जैसे मोड़ा तो टूट गया, लेकिन तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, है ना, लेकिन वो बहुत कठोर, इतना कठोर हो गया, है ना। कोई चीज बहुत कठोर होती तो वो झुकती नहीं है, टूट जाती ना, तो वो टूट गया, इसलिए टूट गया, है ना। लेकिन ये तोड़ने का जो है ये बात नहीं थी कि भाई तोड़ना है, ना, लेकिन वो टूट गया। तस्य शब्दो महान आसीन निर्घात समन सुनाम भूमिकंपश्च सुमहान पर्वतस्यैव धीर्यतः। मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक और दोनों श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर शेष जितने लोग वहां खड़े थे वे सब धनुष टूटने के भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। केवल कितने लोग बचे जो मूर्छित नहीं हुए?
चार।
कौन कौन? विश्वामित्र जी और राजा जनक और राम और लक्ष्मण, चार लोगों को छोड़कर के बाकी सब मूर्छित होके गिर गए। निपेतोश्चा नरा सर्वे तेन शब्देन मोहितान वर्जयित्वा मुनिवरम राजानं तौच राघव। थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ तब निर्भय हुए राजा जनक ने हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्र से कहा, प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन् राजा विगतय साधुसहन वाच प्रांजलिर्वाक्यम वाक्यज्ञो मुनि पुंगवम्। हे मुनिवर, मैंने श्री राम का पराक्रम आज अपनी आंखों देख लिया। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना अत्यंत अद्भुत अचिंत और अतर्क घटना है। भगवान दृष्टि वीरियो में रामो दशरथात्मज अत्यद्भुतम अचिंत्यम चा अतर्कितम इदम मया। मेरी पुत्री सीता श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। जनका नाम कुले कीर्तिर कीर्तिम आहरिष्यति मे सुताम सीता भर्ता रमासाद्य रामम दशरथात्मजम। मैंने सीता को वीर शुल्का बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वो आज सत्य और सफल हो गई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी अधिक बढ़कर है। अपनी ये पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करता हूँ। मम सत्या प्रतिज्ञा सा वीर शुल्केति कौशिक सीता प्राणेर बहुमता देया रामाय मे सुता। आपका कल्याण हो यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाएं और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाएं। अब आप आज्ञा दीजिए। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था कि भाई लड़की देखने जा रहे हैं विवाह है। अब मेरे जो मंत्री हैं वो जाएंगे बड़ी जल्दी और महाराज दशरथ को लेवा के लाएं। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर ये निवेदन करें कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था उस सीता का विवाह श्री राम के साथ होने जा रहा है। भवतो अनुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मन्त्रिणः मम कौशिके भद्रं ते अयोध्यां त्वरितारथः राजानं प्रसृतैर्वाक्यैर् आनयन्तु पुरं मम प्रधानं वीरशुल्काय कथयन्तु च सर्वशः। ये लोग महाराज दशरथ से ये भी कह दें कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित होकर मिथिला में पहुँच गए हैं। महाराज दशरथ को तो कोई समाचार नहीं मिला। उन दिनों कुछ मोबाइल नहीं था ना, उन दिनों मोबाइल की सुविधा नहीं थी, समाचार पत्र भी नहीं होते थे। तो दशरथ को अभी तक कोई समाचार नहीं मिला है। तो महाराज जनक कह रहे हैं कि महाराज दशरथ को समाचार दीजिए, मेरे मंत्री देंगे। क्या देंगे? कि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ कुशल पूर्वक मिथिलापुरी में हैं। इस प्रकार प्रीति युक्त हुए राजा दशरथ को मेरे मंत्री जल्दी यहाँ बुला लाएं। मुनिगुप्त चका कुस्तौ कथयन्तो नपाए वैं प्रीति युक्तम तु राजानं आनयन्तो सुशीघ्रगाम। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्रियों को समझा बुझा कर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। कौशिकस्तु तथेत्या है राजा चाभाष मंत्रिणाम अयोध्याम प्रेषयामास धर्मात्मा कृत शासनाम यथावृत्तम समाख्यातुम आनेतुम चान्यपम तथा। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए चल पड़े। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। जनके न समाधिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहन त्रिरात्रं मुषिता मार्गे ते अयोध्यां प्राविशन् पुरी। जनकपुरी से अयोध्या आए हैं। कितना दूर है? जनकपुरी बिहार में है, अयोध्या यूपी में है। कितना दूर होगा? 500 किलोमीटर होगा करीब, है ना? ज्यादा 700 किलोमीटर होगा।
लास्ट है ना, बिहार का लास्ट में है जनकपुर, नेपाल क्रॉस करता है।
हाँ,
नेपाल के अंदर आता है,
नेपाल के अंदर है। तो 500 से 700 किलोमीटर होगा।
गोरखपुर होकर के उधर 5 किलोमीटर ज्यादा होगा।
700 किलोमीटर है। 700 किलोमीटर 3 रात जो है वो रुके, उनके घोड़े जो है थके होने के कारण घोड़ों को विश्राम देना था। जनके न समाधिष्ठा दूतास्ते क्लांतवाहनां त्रिरात्रं सीता मार्गे तेजोध्यां प्राविशन् पुरी। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। राजवेश में प्रवेशिता दत्सुरदेव संकासम वृद्धम दशरथम नृपम। दशरथ जी वृद्ध हैं। कितने वृद्ध हैं पता है? कितने साल है?
60,000
साल की आयु है। राजा दशरथ की आयु कितनी है? 60,000 वर्ष की आयु है, वृद्ध हैं। उन सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़ निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में ये विनय युक्त बात कही। महाराज मिथिला पति राजा जनक ने अग्नि को सामने रखकर मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका और आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बार बार कुशल मंगल पूछा। बद्धांजलि पुटा सर्वे दूता विगत साधु साम राजानं प्रसितं वाक्यम अब्रवन मधुराक्षरम मैथिलो जन को राजा साग्ने होत्र पुरस्कृत मुहुर् मुहुर् मधुरया स्नेह सन्नक्तया गिरा कुशलम चाव्यम चैव सोपाध्याय पुरोहितम जनकस्त्वाम महाराज पृच्छते सा पुरासरम। इस प्रकार कुशल पूछकर विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको ये संदेश दिया है। किसे संदेश दिया है? विदेहराज मिथिलापति विदेहराज ने है? और किसकी आज्ञा से? महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से ये संदेश दिया है आपको। पृष्ठा कुशलम अभ्यग्रम वैदेहो मिथिलाधिपहम कौशिकानु मते वाक्यम भवंतम इदम अब्रवीम। राजन आपको मेरे पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्र के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा आए किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर अपने अपने घर लौट गए। पूर्वम प्रतिज्ञा विदिता वीर शुल्काम आत्मजा राजानश्चा कृतामर्षा निर्वीर्या विमुखी कृताम। वही मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया। सेयम मम सुता राजन विश्वामित्र पुरस्कृत यदृच्छयागत राजन निर्जिता तव पुत्र के। महाबाहु श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। तच्चरत्नम धनुर्दिव्यम मध्य भग्नम महात्मनम रामेण ही महाबाहो महत्याम जन संसदी। अतः मैं इन श्री राम को अपनी कन्या सीता प्रदान करूंगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। अस्मै देया मया सीता वीर शुल्का महात्मने प्रतिज्ञा तर्तुम इच्छामि तदनुज्ञातुम अर्हसि। महाराज आप अपने गुरु एवं पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र पधारें और अपने दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को देखें, आपका कल्याण हो। किसने कहा? दूतों ने कहा। हाँ बताया। संदेश किसका है? जनक महाराज का संदेश है। सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरस्कृत शीघ्र आगच्छ भद्रम ते दृष्टुमर हसी राघव। राजन यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह के आनंद की प्राप्ति होगी। प्रतिज्ञा मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुम अर्हसि पुत्रयोरभ्योरेव प्रीतिम त्वम उपलप्स्यसि। राजन इस तरह विदेहराज ने आपके पास ये मधुर संदेश भेजा था, इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और सतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई है। सतानंद कौन है? महाराज जनक के पुरोहित हैं, है ना? गौतम ऋषि के पुत्र हैं। अहल्या जिसको कि गौतम मुनि ने साप दिया था, तो उन्हीं के पुत्र हैं, अहल्या के पुत्र सतानंद जी। एवं विदेहाधिपतिर मधुरम वाक्यम ब्रवीन विश्वामित्राभ्यनुज्ञाता सतानंद मते स्थित। संदेशवाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव और अन्य मंत्रियों से कहा, दूतवाक्यम दुतच्छ्रुत्वा राजा परम हर्षितः वशिष्ठं वामदेवं च मंत्रणस्यैवम् अब्रवीन्। दशरथ जी अपने मंत्रियों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि विश्वामित्र मुनि से सुरक्षित होकर श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह के देश में निवास करते हैं। गुप्ता कुश के पुत्रेण कौसल्यानंद वर्धन लक्ष्मण सा भ्रातरा विदेह सुत्य वहाँ राजा जनक ने श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ करना चाहते हैं। दृष्टवीर्यस्तु काकुस्तो जनकेन महात्मनां संप्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुम इच्छसि। यदि आप लोगों की रुचि और सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चलें, इसमें विलंब ना हो। कौन कह रहे हैं? नहीं, दशरथ जी नहीं कह रहे हैं, जनक महाराज जनक के दूत बोल रहे हैं। महाराज जनक के दूत बोल रहे हैं कि यदि आप लोगों की रुचि और सहमति हो तो हम लोग शीघ्र ही जनक की मिथिलापुरी को चलें, इसमें विलंब ना हो। यदि वो रोचते वृत्तम जनक से महात्मना पुरी गच्छा मैं शीघ्र माँ भूत काल से पर्य। ये सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देना है। मंत्रणो बाढ़ो सा सर्वैर महर्षि सुप्रीत प्रवीण राजा सो यात्रेति च मंत्रिणः। अब रात व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले, ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्याय स बांधवान् राजा दशरथो हृष्टा सुमंत्रम इदम अब्रवीन्। आज हमारे सभी खजांची बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न होकर सबसे आगे चले। पुत्र के विवाह में महाराज दशरथ अपना पूरा खजाना ही क्या कहना चाहते हैं, लुटाना चाहते हैं, तो क्या कहा कि सब प्रकार के संपन्न रत्नों से संपन्न होकर सबसे आगे चलें, उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम ब्रजंतो ग्रे सुविहिता नाना रस समन्विता नाना रत्न समन्विता। सारी चतुरंगिणी सेना भी यहाँ से कूच कर दे। चतुरंगिणी सेना क्या मतलब? अंगणी का मतलब है अंग वाली और चतु माने चार, जिसके चार अंग होते हैं। तो चार अंग क्या है? हाथी सवार और घुड़सवार और रथ सवार और पैदल है ना। तो चतुरंगिणी सेना भी यहाँ से शीघ्र कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियाँ और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दें। चतुरंग बलम चापि शीघ्रम निर्यातो सर्वशः ममाज्ञा समकालम च यानम योग्य मनोत्तमम। वशिष्ठ, वामदेव, जाम्बाली, कश्यप और मार्कंडे और कात्यायन, ये सभी महर्षि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगिणी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चली। चार दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। तब आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुंचे, उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। राजा जनक ने आनंद मग्न हुए राजा दशरथ से कहा, रघुनंदन आपका स्वागत है, मेरे बड़े भाग जो आप यहाँ पधारे। वाचे वचनम श्रेष्ठ नर श्रेष्ठम दानवितम स्वागतम ते नर श्रेष्ठ दृष्टिया प्राप्त हो श्री राघव। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीति प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। वशिष्ठ मुनि ने भी हमारे सौभाग्य से यहाँ पदार्पण किया है। ये सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गईं। रकुल के महापुरुष महान बल से संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरा कुल का सम्मान बढ़ गया है। सुन रहे सब लोग? कौन कह रहे हैं? राजा जनक कह रहे हैं। दशरथ कह रहे हैं? राजा जनक कह रहे हैं कि हमारे कुल का सम्मान बढ़ गया है ना। इनका कुल कौन सा है? जनक का निमि वंश है ना, और इनका हाँ रघुवंश या सूर्य वंश इस तरह से है। कल सवेरे इन सभी महर्षियों के साथ उपस्थित हो मेरे यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की ये बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले महाराज दशरथ ने राजा जनक को इस प्रकार उत्तर दिया। धर्मज्ञ, मैंने पहले से यह सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है। प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, जो देने वाला है तो वो लेने वाले को अपने बस में रखता है। तो आप देने वाले हैं तो हम जो है लेने के लिए आए हैं, तो हम आपके अधीन हैं, तो आप जैसा आदेश करो वैसा ही हम करेंगे। ये किसने कहा? दशरथ जी ने कहा। प्रतिग्रहो दात्रिवसा सुतमे तन्मया पुराम यथा वक्षसि धर्मज्ञ तत्करिष्यामहे वयम्। सत्यवादी राजा दशरथ का वो धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेहराज जनक को बड़ा विस्मय हुआ। तब सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। सबने बड़े सुख से वो रात बताई। इधर श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। अथ राम ओ महातेजा लक्ष्मण ने समम विश्वामित्रम पुरस्कृत पिदोपादाम। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया और अपने दोनों पुत्रों को सकुशल देकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहाँ रहे। महातेजस्वी राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया और अपने दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार करके सुख से वो रात्रि व्यतीत की। तो यहाँ आज की कथा को विश्राम देने भी टाइम कितना हुआ है? 10 मिनट का है, 9 बजने में। तो कुछ लीला सीता जी से संबंधित जो हमारे साथ लीला हुई है वो आपको मैं सुना रहा हूँ। ये बहुत आश्चर्य की घटना है। ये घटना है 9 सितंबर 2014 की। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने कि हुआ क्या, किस दिन की घटना है? 9 सितंबर 2014। इस दिन प्रद्युम्न प्रिया प्रभु मेरी गाड़ी में अकेले बैठकर प्रचार के लिए दिल्ली शहर में गए थे। प्रद्युम्न प्रिया प्रभु आप लोग देख रहे हैं सामने बैठे हैं, आप लोगों के सामने हैं। तो गाड़ी में अकेले बैठकर के प्रचार के लिए दिल्ली शहर में गए। उस समय गाड़ी में लगी हुई सीडी में मेरा एक ऐसा प्रवचन निकला जिसमें वर्णन आया था कि जिसमें लक्ष्मण जी सीता महारानी को वन में अकेले छोड़कर चले गए श्री राम की आज्ञा से। लक्ष्मण जी सीता जी को वन में अकेले छोड़ करके चले गए। उस समय सीता जी वन में भयभीत होने के कारण मूर्छित हो गई। ऐसी स्थिति में वन में रहने वाले हंस अपने पंखों में जल भरकर सीता जी के शरीर पर सब ओर से जल छिड़कने लगे। कोई मनुष्य है नहीं जंगल में, सीता जी को अकेला छोड़ करके लक्ष्मण जी चले गए है ना। तो भगवान चूंकि प्रत्येक प्राणी के हृदय में है ना, तो उनकी सेवा कौन कर रहे हैं? हंस कर रहे हैं। और हंस क्या कर रहे हैं कि जल अपने पंखों में भर करके उड़ के आते हैं और सीता जी के ऊपर छिड़क रहे हैं। कोई मूर्छित हैं सीता जी मूर्छित हैं। उसी समय एक आश्चर्य हुआ, आप सुनिए बड़े ध्यान से, ये तो गाड़ी में जो सीडी से निकल रहा है, मेरी आवाज में प्रवचन निकल रहा है, तो ये तो शब्द गाड़ी के अंदर से निकले, मशीन के अंदर से निकले। उस समय एक आश्चर्य हुआ, उस समय वर्षा इतने धीरे धीरे होने लगी मानो हंस पक्षी सीता जी के ऊपर जल छिड़क रहे हों। हरि बोल। जैसे ही ये घटना मतलब निकली, उस वर्णन निकला कि हंस पक्षी जो है अपने पंखों से जल छिड़क रहे हैं सीता जी के ऊपर, है ना, उसी समय वर्षा ऐसे धीरे धीरे हुई है जैसे जल का छिड़काव हो रहा हो। अब कथा आगे बढ़ी, उस समय कथा में वर्णन आया कि हाथी अपनी सूंड़ों में जल भरकर सीता जी के धूल से भरे हुए शरीर को धोने के लिए उनके शरीर पर जल की धारा बहाने लगे। जंगल के हाथी हैं है? तो वह भी सीता जी की सेवा कर रहे हैं, मूर्छित पड़ी हैं सीता जी है? और उनका पूरा शरीर धूल में भरा हुआ है, तो वे हाथी क्या कर रहे हैं, अपने सूंड़ में पानी भर करके और पाइप उन्होंने लगा दिया धोने के लिए, शरीर सीता जी को धोने के लिए अपने दोनों पाइप लगा दिए सूंड के, है ना। तो समय क्या हुआ, ठीक उसी समय इस घटना का वंचन अत्यंत आश्चर्यजनक रूप में हुआ। उस समय ड्राइवर ने वर्षा की बूंदों और धूल से मैले हुए सामने वाले शीशे को धोने के लिए वाइपर चलाया, उसमें पानी भी चालू किया। वाइपर से पानी की धारा उसी प्रकार निकली मानो हाथियों के सूंड से पानी की धारा सीता जी के शरीर पर गिर रही हो। हरि हो। ये कितना आश्चर्य हुआ है। इस प्रकार श्री कृष्ण की व्यवस्था से दो घटनाओं का मंचन हुआ। पहली घटना थी कि हंस पक्षी अपने पंखों में जल भरकर सीता जी के ऊपर जल छिड़कने लगे, तो इस घटना का मंचन करने के लिए ऐसी वर्षा होने लगी मानो जल छिड़क रहा हो। फिर दूसरी घटना थी कि हाथी अपने सूंडों के द्वारा जल की धारा सीता जी के ऊपर बहाने लगे, तो इस घटना का मंचन इस प्रकार हुआ कि ड्राइवर ने अनजान में अपनी आवश्यकता के अनुसार वाइपर में पानी चालू किया था। ड्राइवर ने नहीं सोचा था कि इस घटना का मंचन ऐसे हो रहा है, उसने तो अपनी आवश्यकता के अनुसार वाइपर चालू किया था। श्री कृष्ण के ऐसे आश्चर्य को देखकर प्रद्युम्न प्रिया प्रभु अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। एक लीला है 8 मई 2014 की, अभी तो हमने जो सुनाई थी वो किस तारीख की थी, 9 सितंबर 2014, है ना, और ये घटना है 8 मई 2014। ये सीता महारानी का आविर्भाव दिवस था, अभी आने वाला है 15 मई को, ये 8 मई को जो है सीता महारानी का आविर्भाव दिवस था। इस दिन मैंने सीता महारानी के संबंध में प्रवचन देते हुए पद्म पुराण से उस घटना का वर्णन पढ़कर सुनाया, सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से। उस दिन मैंने प्रवचन दिया था कहाँ पर, इष्ट कैलाश वाले मंदिर में, जिसमें सीता जी ने अपनी सखियों के द्वारा अपने बगीचे में श्री राम की चर्चा करने वाले सुख पक्षी के जोड़े को पकड़वाया। सीता जी अपने उपवन में है और सुख पक्षी का जोड़ा सीताराम की चर्चा कर रहे हैं, तो सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है कि मेरी चर्चा कर रहे हैं ये पक्षी, तो उन्होंने पकड़वाया अपनी सखियों के द्वारा तोता मैना के जोड़े को पकड़वाया, ताकि वे उनके मुख से निकली हुई श्री राम की चर्चा को सुन सकें। उसी समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। मैं जिस आसन पर बैठकर इस कथा का वर्णन कर रहा था, इसी तरह का व्यास आसन वहाँ पर भी है, तो मैं व्यासन पर बैठ करके इस कथा का वर्णन कर रहा था, उसके पीछे एक पक्षी दरवाजे पर लटकते हुए पर्दे पर बैठा हुआ था। पीछे दरवाजा है और पर्दा है, तो पर्दे पर बैठा हुआ था। उस पक्षी ने पर्दे पर बंधी हुई रस्सी को एक टुकड़ा समझकर अपने चोंच में दबाया। पक्षी क्या करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए, कोई रस्सी का टुकड़ा मिल जाए तो चोंच में दबा करके उड़ते हैं। पर्दे पर बंधी हुई रस्सी को एक टुकड़ा समझकर अपने चोंच में दबाया और उसे अपने घोंसले में लगाने के लिए उड़ा। परंतु पक्षी का वो भ्रम था, वो रस्सी का एक टुकड़ा ना होकर एक बड़ी रस्सी थी जो पर्दे से बंधी हुई थी। अब वो कैसे लेके जाएगा? उसने चोंच में दबाया और उड़ा। अतः जो ही वो पक्षी रस्सी को चोंच में दबाकर उड़ा, उससे उड़ने में बाधा होने लगी। उस समय पक्षी को ऐसा लगा मानो उसे किसी ने पकड़ रखा है। इस प्रकार कुछ देर के संघर्ष के पश्चात वो पक्षी अपने चोंच से रस्सी को छोड़कर उड़ गया। अब यदि विचार किया जाए तो ये उसी प्रकार की घटना हुई जिस प्रकार की घटना मैं कथा में कर रहा था। मैं कथा में कह रहा था कि सीता जी ने सुख पक्षी के एक जोड़े को अपनी सखियों के द्वारा पकड़वाया और उसी समय उसी स्थान पर एक पक्षी की ऐसी दशा हो गई मानो उसे किसी ने पकड़ रखा हो। है आश्चर्य कि सीता जी ने सखियों के द्वारा पक्षी के जोड़े को पकड़वाया और यहाँ वो पक्षी जो है मतलब ऐसा हो गया जैसे उसको किसी ने पकड़ लिया हो। है ये पूरी व्यवस्था श्री कृष्ण के ही द्वारा हुई, अन्यथा किसी ने भी नहीं सोचा था कि कथा के समय इसी प्रकार की घटना और इसी स्थान पर और इसी समय पर इस प्रकार घटित होगी। कोई नहीं सोच सकता। श्री कृष्ण की ऐसी लीला को समझ कर प्रभु मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित था, बार बार हर्षित हुए। तो सीता जी से संबंधित आज मैंने आपको दो घटनाएं सुनाई। अब आप लोगों की ओर से कुछ प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ जी बोलिए।
ये कथा जब हम कमरे में पढ़ रहे थे उसके बाद मैं ब्रह्मचारी आश्रम में गया तो जो छप्पर लगा हुआ था अंदर प्रेस करने के लिए, मैंने खुद देखा एक चिड़िया उस वक्त जो है एक धागे में उसका पैर बंधा हुआ था उल्टी, तो उससे आश्चर्य पुष्ट हुआ कि हाँ वास्तव में भगवान की।
इस कथा को मैंने कमरे में पढ़ा था,
कमरे में इस बात की चर्चा हुई।
अच्छा, इस बात की चर्चा हुई थी, ऐसा हुआ।
उसके बाद
एक और लीला बता रहे हैं, जब कमरे में चर्चा हुई कि आज के दिन जो है ये घटना हुई, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में गए तो एक पक्षी जो है छप्पर में
चिड़िया।
एक चिड़िया थी,
एक टांग धागे में बंधी थी और ऊपर
धागे में बंधी थी एक टांग और वो जो है लटकी थी। तो ये आश्चर्य, तो ये आश्चर्य जो है ये भगवान ही करते हैं ऐसे। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न करूँ। हम लोग अक्सर जो कथा सुनते हैं या लीला देखते हैं वो इस तरह की होती है कि सीता जी का स्वयंवर हुआ और सीता जी के स्वयंवर में बहुत से राजा लोग आए हैं। क्या ऐसे ही है ना? सीता जी स्वयंवर में बहुत से राजा लोग आए और राम लक्ष्मण भी आए और उसी स्वयंवर में सब राजा अपनी अपनी शक्ति आजमाते हैं, धनुष को नहीं उठा पाते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस तरह से है कि जब सब राजा लोग आए थे और उन्होंने पूछा जनक महाराज से कि आपकी कन्या का विवाह के लिए क्या नियम रखा है आपने, तो उन्होंने बताया कि पराक्रम का जो है कुछ हम शुल्क लेते हैं। और क्या पराक्रम का शुल्क क्या था?
धनुष को
चढ़ाना है, प्रत्यंचा बांधना है और फिर चढ़ाना है, धनुष को चढ़ाना है, है ना? तो जब राजा लोग उसको हिला भी नहीं सके, है ना, तो फिर राजाओं ने फिर क्या किया? सब मिल करके क्या किया? हाँ ये गलत है, ये आपने इस तरह का जो पराक्रम का जो शुल्क मांगा है ये गलत है, क्योंकि पराक्रम ऐसा जब हो ही नहीं सकता है तो आपने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? और हम अब क्या करेंगे? बलपूर्वक सीता को ले जाएंगे, छीन लेंगे, है ना? तो कितने समय तक उन्होंने सब राजाओं ने अपनी सेना के द्वारा घेरा डाला? एक साल तक युद्ध होता रहा और उसमें महाराज जनक की एक सेना है और उनकी सब की सेना इकट्ठी, तो एक साल में क्या हुआ? हाँ, उनकी पूरी सेना नष्ट हो गई, उनका युद्ध के जब हथियार कुछ नहीं रहे तो उनको बड़ी चिंता हुई। तो क्या किया उन्होंने? देवताओं को प्रसन्न किया और देवताओं से सेना मांगी और देवताओं की सेना ने फिर उनको भगाया और सब भागे, है ना? और अब महाराज जनक दिखा रहे हैं उस धनुष को। हाँ, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि केवल दिखा दो और हमारे साथ में जो दो राजकुमार हैं ये देख करके संतुष्ट होकर के चले जाएंगे, दिखा दो। लेकिन जनक जी ने फिर अपना प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? अगर श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दें हैं और खींचें प्रत्यंचा को, तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ कर दूंगा, है ना। तो श्री राम ने कहा कि मैं प्रयास करता हूँ, है ना, और उसकी प्रत्यंचा खींची। तो क्या तोड़ना था धनुष को? तो फिर टूटा कैसे? तो बहुत, हाँ बहुत कठोर हो गया था, बहुत कठोर हो गया, जैसे बांस, हरा बांस है ना, जब आपने तोड़ा तो झुक जाता है, लेकिन बहुत समय होने के बाद क्या होता है, वो कठोर हो जाता है ना। तो अगर उसको बहुत बल प्रयोग करें उसको झुकाने का तो वो टूट जाता है। तो ये जो धनुष था ये इतना प्राचीन था, बहुत कठोर हो गया था, है ना। तो उसको जो है अब जो है खींचना, प्रत्यंचा से जो के द्वारा खींचना संभव नहीं था, और श्री राम ने उसको खींचा, कान तक खींचा, है ना। तो ये बात नहीं है कि धनुष तोड़ने की शर्त थी, हाँ कि धनुष तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो पूजनीय था, वो उसकी पूजा होती थी धनुष की, है ना। लेकिन जब टूटा धनुष तो इसमें किसी का दोष नहीं था, तो धनुष तो होता ही है प्रत्यंचा खींचने के लिए, धनुष तो इसीलिए होता है। तो धनुष को जब भगवान ने खींचा, प्रत्यंचा उसकी खींची, तो वो टूट गया, तो एक अलग से घटना हो गई इस प्रकार की, है ना। और धनुष के टूटने से कितना बड़ा शब्द हुआ, कितना भयानक शब्द हुआ, क्या उसका परिणाम हुआ कौन बताएगा? सब बेहोश हो गए, चार लोगों को छोड़ करके। चार लोग कौन थे? राजा जनक, विश्वामित्र मुनि और राम लक्ष्मण। चार लोगों को छोड़ करके बाकी सब लोग मूर्छित हो गए उस धनुष की जो इतनी भयंकर आवाज हुई, टूटने की आवाज हुई। तो इस तरह से फिर श्री राम का विवाह हुआ, है ना। हाँ जी,
इनको संदेह है।
देखिए तुलसी की जो रामचरितमानस, तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, तो उसमें उन्होंने अनेक शास्त्रों से ये कथाएं ली हैं, और जितने शास्त्र हैं सब में राम कथा है और अलग अलग प्रकार से है। क्योंकि राम का अवतार अगर प्रत्येक त्रेता में होता है, तो ये भी बताएगा कि हर त्रेता में राम का अवतार होता है, और अगर हर त्रेता में नहीं होता है तो जब भी होता है, लेकिन होता तो है, कई बार राम का अवतार हो चुका है, ठीक है ना। तो एक कल्प भेद से ये सब जो कथाएं हैं ये मानी जाती हैं, ठीक है ना। किसी कल्प में इस तरह से भी घटना हुई, है ना। तो जहाँ जिन जिन शास्त्रों में राम कथा का वर्णन मिलता है, उन शास्त्रों में ये नहीं बताएगा कि ये किस कल्प की कथा है, आप समझे ना। तो किसी कल्प में इस तरह से भी हुआ, है ना। वाल्मीकि मुनि ने जो लिखी है ना, तो वो भी जो है मतलब दिव्य दृष्टि के द्वारा उन्होंने लिखी है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन रामचरितमानस जो लिखा है तुलसीदास जी ने, तो उन्होंने स्वीकार किया है कि मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, मैंने तो अपने गुरु के मुख से बार बार सुना कथा को, तो मैंने उसको लिखा है। तो तुलसीदास जी बहुत सच्चे और बहुत विनम्र होकर के बता रहे हैं, वाल्मीकि मुनि बहुत सच्चे हैं, सच्चाई के साथ बता रहे हैं, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उन्होंने सब लीलाएँ अपनी आँखों से देखी हैं, उनके सामने नहीं, लेकिन जो पहले घटित हुआ है तो दिव्य दृष्टि के द्वारा वो भी देखा जा सकता है, कि जो पहले घटना हुई है उसका भी जो है पूरा जो रिकॉर्डिंग है वो देखते हैं, दिव्य दृष्टि के द्वारा देखते हैं। हाँ, संजय ने, तो संजय तो खैर महाभारत में थे उस समय, हाँ, लेकिन दिव्य दृष्टि के द्वारा पहले की घटना भी देखी जा सकती है। तो वाल्मीकि मुनि ने इस प्रकार से घटनाएं देखी हैं। ठीक है, तो कल हम और आगे कथा सुनेंगे। श्री सीता कथा महामहोत्सव की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा वल्लभ गौरताई की जय।
जितना मैंने डिलीट करके मेमोरी बनाया था ना,
थोड़ी देर के लिए।